نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حج اور عمرے کی آسانیاں. الحمدللہ اس میں سے ہم نے کافی حصہ پڑھا اور ایک ایک چیز کے اندر ہمیں اپنے لیے نہ صرف یہ ہے کہ سہولت محسوس ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی دل میں اترتا ہے بندے کے کہ ہمارا دین آسانیوں والا دین ہے. اللہ نے ہمیں وہ دین نہیں دیا کہ جس میں رہ جاتی مشکلات ہوں. تو یہاں ہم چند باتیں دہرا لیتے ہیں اس بات کی کہ دین ہمارا جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور سب لوگ عموماً مشکل چیز نہیں کر پاتے. ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا, جیسے آپ دیکھیں کہ کلاس میں ایک بچہ فرسٹ آ جاتا ہے, ایک سیکنڈ آتا ہے, ایک تھرڈ آتا ہے, لیکن پاس ہونے والے بچے کئی سو ہوں گے. اسی طرح سے جو عام طور پہ لوگ ہیں نا وہ بیچارے بیچ میں ہی رہتے ہیں. تو دین کا وہ رخ جس میں ہر چیز سب کے لیے قابل عمل ہو اس کو قبول کرنا چاہیے. آپ جب اپنی ذات پہ لیں عمل کریں تو آپ کو کوشش کر کے اچھے سے اچھا عمل کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں جب نماز ادا فرماتے تھے تو بڑی طویل صورتیں پڑھتے تھے, لیکن جب لوگوں کے بیچ میں جماعت کرواتے جہاں بچے والی عورتیں بھی ہوتی بوڑھے لوگ بھی ہوتے تو اس صورت میں پھر آپ کیا کرتے تھے, مختصر صورتیں پڑھاتے تھے. آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کسی جگہ کوئی ایسا امام ہو کہ جو دوسروں کو لمبی لمبی صورتیں پڑھوائے. تو یہ چیز ہمارے دین کا حسن بھی ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ چند لوگ عمل کریں گے بہت بڑی کام کریں گے, بہت نیک ہو جائیں گے. آج ہمارا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر معاشرے میں کچھ لوگ نیک ہونے چاہیے, کچھ لوگ درس دینے والے ہونے چاہیے, کچھ لوگ ہیں جو جنازہ پڑھا دیں, کچھ لوگ ہیں جو نکاح پڑھا دیں. نہیں, اسلام کا معیار یہ نہیں ہے, بلکہ معیار کیا ہے کہ سبھی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا موقع دے کہ وہ اچھے سے اچھے کام کر سکیں. تو اسی طرح سے اس حج اور عمرے کے مسائل کے دوران جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانیوں کی دی ہیں, اس میں آج ہم شروع کریں گے مکہ مکرمہ آنے جانے سے متعلقہ آسانیاں. پیج نمبر 35 ہے, اگر آپ اس کو دیکھ لیں. اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ کافی چیزیں پڑھی ہیں, اور اگر چاہیں تو اسی کتاب کا جو پورا فل ورژن ہے اس میں سے اس کے حوالے اور ریفرنس سارے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دوست بنا دے. آج یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وظائف کے نام پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح کی محفلیں جو کسی ایک خاص موقع پہ رسماً رکھی جاتی ہیں اس میں لوگ بڑی خوشی سے جاتے ہیں اور اس کو نیکی بھی سمجھتے ہیں, لیکن جہاں علم کی بات ہو تو لوگ یہ سوچتے ہیں یہ بھی کوئی ایکسٹرا کام ہے, یہ بھی چند لوگوں کے کرنے کا کام ہے, چلیں جب وقت آئے گا تو ہم فلاں سے پہنچ لیں گے فلاں سے پوچھ لیں گے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ کام کبھی بھی دوسرے کے کام کیے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو روٹی نہ بنانی آتی اور آپ صرف انتظار ہی کرتی رہیں کہ کوئی دوسری سسٹر آئے اور روٹی بنائیں, مشکل ہو جائے گا نا. آپ کتنی لذت سے محروم ہو جائیں گے, آپ اپنے لیے روٹی نہیں بنا سکتی, پھر آپ کو ٹھنڈی کھانی پڑے گی, بازار کی کھانی پڑے گی, وقت سے بے وقت کھانی پڑے گی. تو ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کریں. اب خاص طور پہ آپ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بھی کہوں کہ ساتھ جاتے وقت کچھ بک ساتھ لے کر جائیں. میں انشاءاللہ آپ کو ریکمینڈ بھی کر دوں گی ایک چیز جو آپ کے سفر میں, ایک تو یہ حج کے مسائل ہیں جو چھوٹی چھوٹی آپ کو دعائیں کی بکس دی جا رہی ہیں, یہ تو ہیں ہی, یہ تو ایک وقتی بات ہے, حج ہم وقتی چیز ہے, لیکن آپ نے وہاں جا کر اتنا فارغ جو وقت ہونا ہے, سفر کتنا ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھیں انتظار, بس انتظار, حج از اکول ٹو انتظار. جہاں آپ آدھا گھنٹہ سوچتے ہیں وہاں چار گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, بس میں انتظار ہے آپ کے پاس, پھر آپ اگر کھانا لینے گئے تو انتظار ہے. اس انتظار کو ہلکا کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ مطالعہ ہے. کتاب کھول لیں, اپنے ساتھ ایک کتاب پرس میں ہمیشہ رکھیں, چھوٹی سی رکھیں بڑی سی رکھیں, جہاں سٹک ہوئے آپ تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ نے بس تو نہیں چلانی, جہاز تو نہیں چلانا, ٹھیک ہے کچھ آرام بھی کریں. لیکن میں نے دیکھا ایسے وقت میں لوگ کیوس گھڑی دیکھ رہے ہیں, فون پہ ٹائم دیکھ رہے ہیں, الجھ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, بس نہیں آئی, ہماری بس کدھر چلی گئی, ہم یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں, دس اینڈ دیٹ. نہیں, اچھے طریقے سے اپنے وقت کو استعمال کریں, کچھ سنتے رہیں. اگر آپ کے فونز کے اندر بیٹریز اچھی ہیں اور آپ روز اس کو رات کو چارج کر لیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. میں اس میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں, میں نے عمرے پہ جو کیا اس دفعہ, آپ دیکھیں جتنا بھی مرضی آپ خود اپنے طور پہ پڑھ سکیں وہ پڑھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعائیں اور حدیثیں ہیں وہ بہت ہی فائدہ دیتی ہیں. میرے پاس فون میں ایپس ہیں دعاؤں کے جس میں آڈیوز بھی ہیں, اسی طرح تلاوت بھی ہے. अमूमन क्या करती थी मैं अपने तौर पे, आप करें ना करें लेकिन आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ये बात शेयर कर रही हूँ। तवाफ़ है, अब मसाब देखिए कि 7 चक्कर है ना, अब आप क्या करते हैं कि 7 चक्रों में से आप तरतीब अपनी खुद बना लें। मेरी बात को तो याद भी ना रखें, वरना ये भी बातें बाज़ दफ़ा लोग बिदत बना देते हैं। अच्छा जी, उन्होंने पहले चक्कर में क्या कहा था, दूसरे में क्या कहा था, कुछ भी नहीं कहा था। हमने वही पढ़ना है जो अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तवाफ़ शुरू किया जाता है तो तीसरा कलमा, जिसको हमारे कल्चर में मारूफ तौर पे लोग कहते हैं सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, कसरत से ये पढ़ना चाहिए। और रुकने यमानी से लेकर आखिरी जो चक्कर है हजर अस्वद तक, तो उसमें रब्बना आतीना फ़ि दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अब अगर ये पढ़ते हुए भी अगर आप बहुत गौर व फिक्र करें, आपकी सारी दुआएं इसमें भी आ जाती हैं। लेकिन चलिए आप एक चक्कर में अपने लिए दुआएं मांग लें, अपनी बख्शिश से शुरू करें, अपनी कमी बेशियां दूर करें, अपनी खामियां दूर करें, अपनी करेक्टर बिल्डिंग कराएं। पूरा चक्कर आप पहला कहें कि मैंने अपने लिए दुआएं करनी है, आपकी कोई दुआएं, आपकी कोई ख्वाहिशात अपनी ज़ात से मुतल्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चक्कर में आपको क्या चीज़ सबसे अहम है, अगर आपको अपना स्कूल अहम है, आपको अपना मिशन अहम है, उसकी दुआ शुरू कर दें। मैं तो इस तरह शुरू करती थी, एक एक शहर, एक एक मुल्क के लोगों का सोच कर, वहाँ के मसाइल, वहाँ की खूबियाँ, वहाँ वालों की ख्वाहिशें, क्या हमारे इरादे हैं, प्रोजेक्ट हैं, उसको शुरू कर देती थी। अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चलता था एक चक्कर किधर चला जाता है, इतनी चीज़ें होती हैं जहन में। फिर इसी तरह से आप अगले चक्कर में माँ बाप के लिए दुआएं कर लें, एक में बहन भाइयों के लिए, यानी एक बांट है। अब एक दफ़ा ऐसा हो गया, अब दोबारा क्या करें। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस दफ़ा फ़ायदा दी है वो क्या थी कि चूँकि तरावियाँ थी, रमज़ान था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का वक्त एक ऐसा वक्त होता है कि जिस वक्त तवाफ बहुत आराम से होता है। मुझे मज़ा ही नहीं आता ना, मुझे ऊपर वाले फ्लोर में मज़ा आता है, ना सेकंड में ना थर्ड में, और अंदर कमरों बरामदों में नहीं। मेरी तसल्ली कब होती जब मैं बाहर सहन में करूँ, और अल्लाह की रहमत से जब भी गई, जिस दरवाजे से गई, खुला ही मिले। इवन आखिरी रात, 27वीं रात, 29वीं रात की दुआ, ईद की नमाज, सब कुछ बाहर सहन में पढ़ा। आप करते क्या थे, फ़र्ज़ साथ पढ़ते थे जमात के, जो ही फ़र्ज़ों की जमात हुई, बल्कि आप लोग अगर अपने लिए भी ये रखें ना कि अगर आप किसी भी नमाज के फ़र्ज़ों में सहन में पहुंच गए ना, बहुत बेहतरीन टाइम होता है। उसमें क्या होता है कि जो ही जमात ख़त्म होती है ना, तो उसके बाद फिर आपको सुन्नतें ना पढ़ें आप उस वक्त, लोग तो सुन्नतों में हैं, या वहाँ रमज़ान था तो तरावी में थे, आप उस वक्त अपना तवाफ़ शुरू कर दें। अच्छा, तवाफ़ जब हम कर रहे होते थे तो उसमें क्या होता था कि आप कहेंगे तरावी क्यों नहीं पढ़ी, बहुत सारी हैं वो मौका है। आप देखिए कि पहले 10 तरावियाँ एक इमाम साहब पढ़ाते हैं हरम में, फिर उसके बाद 10 एक और पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद रात को क्यामुल लैल में 10 रकत क्याम होता है, बल्कि एक रात में तो 2 दफ़ा हुआ तो 20 भी हुआ। आप इनमें से जिस वक्त में मर्जी अपने लिए तरावियाँ चूज़ कर लें। अब सारी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, और ये सारी होती भी सबके लिए नहीं है, तो हम क्या कर लेते थे उस वक़्त कि जिस वक़्त तवाफ़ कर रहे थे ना, अब इमाम साहब पारा शुरू करते हैं, जो सबसे खूबसूरत चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा उस वक़्त तवाफ़ क्या होता था, वो ही तिलावत। आपको पता है कि नमाज में जब आप इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आप पीछे नहीं पढ़ सकते, सिर्फ सूरह फातिहा जो आप शुरू में वो पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं ना, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी वो पढ़ते हैं ना, वो आपने खुद नहीं पढ़ना होता, वरना इमाम को भूल लाहक होती है। लेकिन मैं तवाफ़ में होती थी, इमाम साहब तरावी में पारा पढ़ रहे हैं, 15वां पारा 16वां, तो जूँ ही वो तरावी शुरू करते थे तो वो तरावी में उनके साथ मैं भी कुरान पढ़ती थी, क्योंकि कुरान पढ़ने जैसी तो कोई दुआ ही नहीं है। अब जब वो रुकू में जाते, सजदे में जाते, उस वक्त खामोशी थी, उस दौरान अपनी दुआएं मांग लेती थी। ये भी एक तरीका रखा, इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि दिल भी लगा रहता है, वैरायटी भी होती है, शऊर के साथ आप उन चीज़ों को शुरू करते हैं और शामिल करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एक और चीज़ जो अब आप कर सकते हैं, ठीक है, अब तो तरावी भी नहीं हो रही, तो आप अपने फ़ोन में डिफरेंट ऐप्स डाल कर जाएं, 2-3 आवाज़ों में किरत अच्छी सी कुराकी, फिर इसी तरह सुबह शाम की दुआएं, कुरानी और मस्तून दुआओं का एक है ऐप, और भी बहुत कुछ है। आप में से जो डलवाना चाहें मुझे आप बताएं, मैं आपको डाल के भी दे सकती हूँ, गाइड भी कर सकती हूँ। उसके बाद जैसे मिसाल है कुरानी दुआएं, मैं कान में हेडफोन लगाकर तवाफ़ के दौरान वो दुआएं शुरू कर देती थी। देखिए हमें खुद आती भी है ना, लेकिन सारी नहीं पढ़ी जाती, कुछ ना कुछ भूल जाती, चूंकि आपके अपने कान में लगती, दोनों में भी नहीं कभी लगाता बंदा, एक में भी लगा सकता है, वो लगाकर साथ साथ पढ़ती रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 55 मिनट में पूरे तवाफ़ में पूरे कुरान की दुआएं हो जाती थी। और सोच अपनी रखनी है, बस आप देखें ना कि जैसे कुरान में हर तरह की दुआएं हैं, सेहत की हैं, बीमारी की हैं, रहमत की हैं, गुनाहों की बख्शिश की हैं, एक पूरे तवाफ़ में आप अपने और अपने प्यारों के लिए सारी दुआएं सिर्फ कुरान की दुआओं में से मांग सकते हैं। इसी तरह आप सही कर रहे हैं सफा मरवा की, आप उसमें मसनून दुआएं चला लें। ये इसलिए बता रही हूँ कि आज के दौर में अल्लाह ने हमें ये सहूलतें दी हैं, लेकिन जो करना है पूरे शऊर और दिल के इरादे के साथ करना है। तो आपको जो बात कह रही थी वो ये थी कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, पैनिक ना हो आपको, वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो क्योंकि आप तो मुताले में मसरूफ थे, और बुक्स लेकर जाएं तो उसमें सबसे खूबसूरत जो सफ़र आपके लिए होगा वो सीरत का सफ़र होगा। आपको तजल्लियात नबूवत बुक भी मिल सकती है, दरमियाने साइज़ की है। अगर आप ज़्यादा अच्छा फास्ट पढ़ने वाले हैं, रही को मख्तूम ले जाएं। इवन अगर मैं आपको कहूँ तो आप उसकी इस ऑडियोज़ भी डाल सकते हैं। हमारा जो नूरुल कुरान का ऐप है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सीरत की बुक तजल्लियात नबूवत है। बुक ले लें, जहाज़ में बैठें और उसको, मैंने देखा सैमसंग में तो ऑडियो सेव भी हो जाती है, आप सारी सेव कर लें। आप दुआएं देंगे, बस मैं इतनी बात कह सकती हूँ। अगर आपने कभी सीरत नहीं पढ़ी, आप मस्जिद नबी में हो, मदीना में हो, मदनी दौर पढ़ लें, मक्का में हो, मक्की दौर में। मैं इनको बता रही थी कि मैं जब मक्का में थी ना, तो मुझे पता नहीं मेरे लाशऊर के अंदर रहता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो और नबी सल्लम का वजूद फील होता है, यानी और अबू बकर सिद्दीक। पता नहीं क्यों मक्का में रहते हुए यही दो तीन शख्सियात पे नज़र होती है, और जो ही मदीना में जाते हैं तो वो सीरत के बाब खुल जाते हैं। कभी उमर फारूक आते हुए दिख रहे हैं, कभी बिलाल अजान देते हुए दिख रहे हैं, कभी मुसब बिन उमैर दिख रहे हैं कि अच्छा ये पहले शख्स बनकर आए थे। आप अपने सफ़र को इतना हसीन सफ़र बनाएं कि जब आप वापस आएँ तो आपको लगे कि आप मक्का मदीना साथ ले आए हैं। ये छोड़ के आने वाली चीज़ें नहीं होती, ये वो चीज़ें नहीं है कि आप गए इतना खर्चा कर कर आगे, भाग दौड़ कर करके आगे। बड़े आराम से अपना सफ़र तय कीजिए, शिकवा कम रखें, गिला कम करें। जहाँ कोई मुश्किल आई समझे ये मुताले का टाइम है। लोग तस्बीह करते हैं, तस्बीह करनी भी बहुत अच्छी चीज़ है, शर्त है कि आपकी तवज्जो हो। अगर आप सुबहान अल्लाह कह रहे हैं तो लव सुबहान अल्लाह में। ये बाज़ दफ़ा हम ज़ुबान पर समझ कर रहे हैं और बाद साथ हम दूसरी बातें भी कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह आपने जितना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अपने आप को गौर व फिक्र में लेके जाना है, अल्लाह ताला उतना आपके लिए इसको आसान करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि मक्का मुकरमा में आने जाने से मुतल्लिक क्या चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें बता दी कि ये सहूलत वाली चीज़ें। तो पहली चीज़ देखिएगा, मुहर्रम के लिए रात दिन में हर वक्त मक्का मुकरमा आने की इजाज़त है। ये बड़ी प्यारी बात है। अमूमन देखिए फ़्लाइट का टाइम आपकी मेरी मर्ज़ी का नहीं होता, जब भी रात का वक्त हो दिन का हो, लेकिन जैसे हम लोग रमज़ान में गए थे ना, हमें बहुत ही अच्छा वक्त मिल गया कि सुबह 11 बजे की फ़्लाइट थी लाहौर से, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 सवा 3 के करीब जब पहुँचे जद्दा में, तो हमारे साथ अब हमारे कुछ वहाँ ऐसे भी प्यारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बीच में रेस्ट हो, ये हो, बहरहाल वो हमें अपने घर ले गए। आराम से वहाँ रोज़ा इफ्तार किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और वो तो चाह रहे थे तरावी इधर पढ़े, और हमारे दिल मक्का में अटके हुए थे कि हमने मक्का में पहुंचना है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको कहा आप खाना साथ ले लें, उन्होंने भी साथ ही जाना था, और उसने 21वीं रात भी थी, 21st नाइट थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वहाँ पहुँचे तो ईशा की अजान हो रही थी। मगरिब हमने उनकी खुशी की खातिर जद्दा में पढ़ ली, और ईशा फिर तरावी फिर रात का क्याम हमें हुआ। अब रात का वक्त था तो आपको पता है कि उम्रा करना हो तो रोज़े की हालत में दिन में गर्मी में करने की बजाय रात के वक्त में सहूलत है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप रात में चले जाएं या दिन में चले जाएं, मुहर्रम रात दिन में किसी भी वक्त मक्का मुकरमा में दाखिल हो सकता है। इस बारे में फजीलत में इख्तलाफ के बावजूद रात दिन में किसी वक्त के जवाज़ पर इत्तफाक है, यानी अब आपसे कोई पूछे सुबह में आना सवाब है, शाम को सवाब है, दोपहर में, हर वक्त सवाब है, कोई हरज की बात नहीं। अब यहाँ साथ ही मैं आपको ये भी चीज़ बताती जाऊँ कि आप गए मक्का में, अब जैसे अभी भी आप जाएंगे तो क्या फौरन जाते ही उमरा करना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नहीं करना चाहिए। हफे थफे पीछे से आप देखिए ना, आप 7-8 घंटे का सफ़र करके गए, पीछे से भी 2-3 घंटे एयरपोर्ट के, फिर जद्दा एयरपोर्ट पे कम से कम आपके 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आम तौर पे, अल्लाह मदद कर दे तो वो और कोई चीज़ है। अब आप 10 घंटे के थके हुए हैं, बाज़ दफ़ा सफ़र में रात दिन का फ़र्क पड़ जाता है, जैसे अमेरिका से लोग आते हैं तो रात दिन में बदली होती है, दिन रात में जेट लॉग चल रहा है, हाय उमरा कर लें, हाय मुश्किल है जल्दी कर ले, खुशबू भी नहीं होता। आप घर जाएं, नबी सल्लम की सुन्नत थी, आपने बल्कि इस चीज़ को पसंद किया कि जब आप मक्का में दाखिल हों पहले गुसल करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर सहूलत के साथ आप उमरा करें। ठीक है, जो फ़र्ज़ नमाज का वक्त है वो फ़र्ज़ आप पढ़ें, होटल में आ जाएं, आराम करना चाहें आधा पौना घंटा आराम करें, फिर उसके बाद फ्रेश गुसल करें, अपना अहराम बदलें, और फिर ऐसे उमरा करें कि बस आपको लगे कि मैं और मेरा रब और कोई नहीं है। लोगों को एक भाग दौड़, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, हाय ये कर लें, वो कर लें, और फिर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि पाँव पहले ही थके हुए हैं, सूजे हुए हैं सफ़र की वजह से। ऐसी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को आराम से करें, और जैसे बात करके मज़ा आता है ना, वैसे अल्लाह से बात करें। ठीक है, तो ये भी एक सहूलत इसमें आप अपने लिए समझ लीजिए कि मक्का में दाखिल होने के फ़ौरन बाद ही हमें उम्रे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और अपोजिट चीज़ भी समझ लें, आप लोगों ने जब वापस आना है, मक्का छोड़ना है, जब भी चाहे तो आपने मदीना से आना है, लेकिन जिसको तवाफ़े विदा कहते हैं, आखिरी तवाफ़े, उसकी बात आगे आनी है लेकिन भूल ना जाऊँ तो इधर ही बता दूँ। अब तवाफ़े विदा करने के बाद कई लोग क्या कहते हैं, यानी ये हमारी खुद साख्ता शरीयत है, तवाफ़े विदा कर लिया, मक्का में नहीं रह सकते, जल्दी भागो, जल्दी करो, होटल में नहीं आना। बाज़ लोग कहते हैं सीधा तवाफ़ करने के बाद जी बस में बैठो, ऐसी कोई बात नहीं है, खाने का वक्त है, भूख लग, नहीं 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 तवाफ़े विदा कर लिया वह, होटल में नहीं जाना, नहीं तवाफ़े विदा कर लिया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप अगर उस हदीस को देखें तो उसमें लफ्ज़ मक्का नहीं आता, बैतुल्ला आता है, बैतुल्ला छोड़ दिया ना आपने, अब उस तरह से आप तवाफ़ करके बाहर आए हैं, इस होटल से सामान उठाना है, या आपको लगता है कि खाना लेना है, या कोई किसी की मदद करनी है, बहुत कुछ करना पड़ता है, अल्लाह की तौफीक से आप कर सकते हैं। तो हमेशा से जहन में रखिए कि हर वक्त हलचल है, हैज़र्ड, ये दीन नहीं है, हमारा दीन सुकून और ठंडक वाला दीन है। तो इसीलिए मक्का में अंदर आने के वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह मक्का मुकरमा आते जाते वक्त मखसूस रास्तों की पाबंदी का ना होना। पांच रास्ते हैं मक्का में दाखिल होने के, जिसको आप कह सकते हैं कि पांच मीकात हैं। आप जब इधर से आते हैं जद्दा से, तो यलमलम के रास्ते से आप गुजर रहे हैं, जो पहले तकरीबन 37 मिनट पहले जद्दा एंटर होने के ये मीकात आता है और ऐलान भी हो जाता है। ठीक है, मदीना से आते हैं तो ज़ुल्खुलैफा है, इसी तरह से यमन के रास्ते से हैं, किसी भी रास्ते से आप आ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, वरना क्या होता, सबको घूम के जद्दा के रास्ते आना पड़ता। आप कहते हैं ना दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आप आते हैं ना, पाकिस्तान वाले हमेशा जद्दा के रास्ते से आएंगे, इसी तरह से जो अमेरिका से कनाडा, यानी हम सब यूरोप वाले जाते हैं तो हम ऊपर वाले रास्ते से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले आएंगे तो कहीं और से, तो हर रास्ते में किसी तरफ से भी आ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा बालाई इलाके से दाखिल होते, ऊपर का हिस्सा जो था, और नीचे की तरफ से निकलते, लेकिन आपने अपनी उम्मत को इन रास्तों के अख्तियार करने का पाबंद नहीं किया, बल्कि इन्हें अपनी मंशा और सहूलत के मुताबिक राहें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। तो क्या पता चला, किसी भी जगह से हम दाखिल हो सकते हैं, और हमारे चूंकि इख्तियार में नहीं होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे आपका एक छोटा सा सवाल हो सकता है जहन में कि हम यहाँ से सीधा जद्दा जाएं और जद्दा से उमरा करके मदीना जाएं, ये अफसल है, या हम पहले मदीना जाकर वापस आएं। कई लोग ऐसे भी करते हैं ना सफ़र में, यहाँ से सीधा मदीना चाहते हैं, मदीना से मक्का आते हैं, दोनों अजर में बराबर है। सहूलत देख लीजिए, अपनी सानी देख लीजिए, अवेलेबिलिटी देख लीजिए, जो आपको आसान लगता है, लेकिन गुना और सवाब की इसमें कोई भी बात नहीं है। अच्छा जी, अब एक जो मक्का में दाखिल होने से मुतल्लिक हमारे जहनों में जी काबे पे पहली नज़र पड़ी, वो शेर भी हैं, नाते भी हैं, काबे पे पड़ी जो पहली नज़र कुछ हुआ, क्या पहली नज़र पड़ने पे दुआएं कबूल होती हैं? ऐसी कोई हदीस नहीं है जी, आंख झपकने से पहले और बाद वाली, ऐसी कोई हदीस नहीं है, हर दुआ कबूल होती है। देखिए अल्लाह तो कहता है कि जो मेरे रास्ते में निकल आया है, बल्कि आज मैं इतनी खूबसूरत हदीसें सुन रही थी आपके लिए, लेकिन मेरे दिल में था कि आप पहले ये बुक पूरी करा लूँ, क्योंकि वो ऐसे प्यारे प्यारे हज पे जाने और उम्रे पे जाने वाले लोगों के लिए हदीस के बाप भरे पड़े हैं, कि जिसको सुनकर जिसने ना भी उम्रे हज पे जाना उसका भी दिल करता है कि मैं ज़रूर जाऊँ। लेकिन यह है कि हम लोग अमूमन फजीलतों वाली चीज़ों पे खुश बहुत होते हैं। ठीक है, तो अब आप दूसरों को ये फतवा भी ना दे दें, अब ये भी नहीं मतलब कि पहली दुआ कबूल नहीं होती, बात समझिएगा, हमारे कल्चर में ये मशहूर और मारूफ है कि पहली नज़र कबूल होती है या पहली दुआ कबूल होती है। अब आपको पता चल गया कि ऐसी कोई बात नहीं, तो अब आप बाहर जाके ये अपने ग्रुप के दूसरे लोगों को कह दें, ओ नहीं नहीं कोई नहीं दुआ कबूल होती, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बात समझ गए। आप अपने दिल की हजूरी और खुशू के साथ जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह सुबहाना ताला उसको कबूल फरमाएगा, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, मांगिए, हर मौके पे मांगिए, और यकीन करें जो पहली दफ़ा जाते हैं उनको तो उस वक्त दुआ मांगनी नहीं आ रही होती, उस वक्त कैफियत ही ऐसी हो जाती है कि हम हैं किधर, होश नहीं रहता, समझ नहीं आता, वो जैसे नई जगह में जाकर वो आंखें खुली खुली की रह जाती हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों का यानी अपने ऊपर ना रखिए। कई लोग फिर कहते हैं कि हाय उस वक्त सही नहीं मांग सके, हाय बाद में कैसे मांगे, क्या करें, तो बहरहाल ऐसी चीज़ों को फिर आप इग्नोर कर देते हैं। ठीक है।